हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विक्रांत रंधावा अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा था। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि आज तारा ने जो कुछ भी कहा था वो सब सुनकर वो अंदर तक हिल गया था। तारा परी के पीछे वो केवल इस जन्म से नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों से था, और तारा परी का जन्म अब परी के रूप में हुआ था। उसके बाद पिछले जन्म के राजा विक्रम सिंह का जन्म इस जन्म में एक खतरनाक राक्षस के रूप में हुआ था, क्योंकि उसकी माँ के दिए हुए वरदान के मुताबिक वो हर जन्म में तारा से ज्यादा शक्तिशाली होगा। विक्रांत रंधावा सोचने लगा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं, लेकिन तुम्हारा जिस्म मुझे हर हाल में चाहिए। तुम्हारा जिस्म मेरी कमजोरी बन चुका है। मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए, और जिसे मैं हर कीमत पर हासिल कर ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए विक्रांत एक बड़ी ही खतरनाक हंसी हंसने लगा था, क्योंकि उसका अंश एक इंसानी शरीर यानी विक्रांत रंधावा के अंदर था, तो उसके अंदर इंसानी गुण भी आ गए थे। वो भी अब तारा परी की तरह इंसानों जैसा सोच और कर सकता था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि अगर कोई इंसान एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है। इसके लिए उसने कुछ प्लान्स रेडी कर लिए थे। साथ ही साथ विक्रांत रंधावा ने अपनी माँ से मिलने का फैसला कर लिया था। विक्रांत रंधावा अच्छी तरह से जानता था कि पिछले जन्म के राजा विक्रम सिंह की माँ अमन के कब्जे में है, लेकिन उसे उनका पता नहीं था, क्योंकि अमन ने तिलस्मी पत्थर के द्वारा उसकी माँ को गोल घेरे में कैद किया हुआ था। उसकी माँ की जान नहीं ली जा सकती थी। अगर उसके मन से अपनी इच्छा से अपनी जान देना चाहती तभी उसकी जान जा सकती थी। ये बात अमन और करिश्मा अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने दो शक्तिशाली जिन्नों को विक्रम सिंह की माँ की देखरेख के लिए रखा हुआ था। अचानक विक्रांत रंधावा के अंदर अपनी माँ से मिलने की इच्छा प्रज्वलित हो गई थी, और वो किसी बहाने से अमन से अपनी माँ का पता निकलवाना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि केवल अमन ही था जिसे पता था कि उसकी माँ कहाँ है। इसीलिए उसने अमन से अपनी माँ का पता निकलवाने का एक रास्ता खोज निकाला था। वहीं तारा अमन और करिश्मा के साथ वापस बंगले में लौट आई थी। बंगले में कदम रखते ही तारा को एक बार फिर से वही राक्षस वाली स्माइल महसूस हुई थी। तारा को समझने में देर नहीं लगी थी कि वो राक्षस यहाँ भी आ पहुँचा है, लेकिन तभी सीढ़ियों से उसे विक्रांत रंधावा चलते आते हुए नजर आए थे। विक्रांत रंधावा को देखकर एक पल के लिए तारा कुछ सोचने लगी थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपनी सोच को झटक दिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रांत रंधावा और उस राक्षस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विक्रांत रंधावा तो बचपन से ही विदेश में रहा करता था, और अपने दोस्त के लिए अब वो इंडिया आया था, और यहाँ भी वो केवल 15 दिन के लिए ही था, जिनमें से 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। इसीलिए उसे विक्रांत रंधावा की ओर से किसी तरह का कोई खतरा नहीं लग रहा था। तारा सोचने लगी थी, जरूर अदृश्य होकर वो राक्षस इस बंगले के अंदर मौजूद है। तारा ने सोच लिया था कि वो उस राक्षस को अब अपने परिवार या अपनी जान पहचान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इसीलिए उसने राक्षस को साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर उसे मुकाबला करना है तो तारा से सीधा सीधा करे। इस तरह से उसके घर वालों या फिर उसके साथ काम करने वालों को परेशान करने का उसका कोई हक नहीं है। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए आया है, तो सिर्फ तारा से ही बात करे। विक्रांत रंधावा ने जैसे ही तारा को देखा वो उसे घूर गया था, क्योंकि तारा को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब तरह की ठंडक आ जाती थी, जिसका एहसास तारा को दूर दूर तक नहीं था। वो तो बस चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर ये महसूस कर रही थी कि आखिर वो राक्षस किस दिशा में है, क्योंकि उस राक्षस की स्मेल उसे बहुत ही ज्यादा आ रही थी, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि वो राक्षस उसके ठीक सामने खड़ा हुआ है विक्रांत रंधावा के रूप में। विक्रांत आते ही अमन से बोला था, अरे अमन कहाँ चले गए थे तुम लोग? तुम्हें पता है तुम लोगों से परेशान हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम लोग कहाँ चले गए थे, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करते। विक्रांत की बात सुनकर अमन बोला था, यार एक्चुअली हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की का मर्डर हो गया है, तो बस उसी के लिए उसके घर पर उन लोगों को संवेदना देने के लिए गए हुए थे। बस अभी अभी वहाँ से ही आए हैं। बाय द वे तुम ठीक हो? तुमने खाना वाना कुछ खाया? तब विक्रांत ने कहा, नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, बस तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। और वैसे भी परिवार के नाम पर अगर मेरा यहाँ कोई है तो वो सिर्फ तुम, तारा और करिश्मा आंटी है और कोई नहीं है। विक्रांत रंधावा ने तारा के नाम पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जिसे करिश्मा जी ने अच्छी तरह से महसूस कर लिया था। विक्रांत रंधावा का तारा के नाम पर इस तरह से जोर देना करिश्मा जी को कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। करिश्मा जी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ विक्रांत रंधावा पर ठहरी हुई थीं, क्योंकि जिस नज़र से विक्रांत तारा को देख रहा था वो उसकी नज़रों से बचा नहीं था। आखिरकार करिश्मा जी एक अनुभवी औरत थीं, उसने कितने ही जन्म गुजारे थे और वो राजा विक्रम सिंह को भी अच्छी तरह से जानती थीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी करिश्मा जी मौजूद थीं। तो आज करिश्मा जी को विक्रांत का तारा को देखना बहुत ही ज्यादा बुरा और अजीब सा भी लगा था, लेकिन खैर उसने उस वक्त इग्नोर कर दिया और फिर बोली थी, विक्रांत बेटा तुम आ जाओ, मैं जल्दी से खाना वाना लगवाती हूँ, सब बच्चे एक साथ खाना खाओ और उसके बाद अपने अपने कमरे में आराम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों किसी भी बात को लेकर टेंशन में रहो। करिश्मा जी की बात सुनकर तीनों के तीनों मुस्कुरा दिए थे। और तब तारा ने अमन से कहा था, अमन सर मैं पहले नहाना चाहती हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तारा वहाँ खड़े होकर राक्षस की स्मेल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो जल्दी ही अपने कमरे में चली गई। तारा जैसे ही सीढ़ियों पर चलकर अपने कमरे की ओर जाने लगी, विक्रांत उसी ओर देख रहा था। करिश्मा जी ने फिर से एक बार ये बात नोटिस कर ली थी और अब उन्हें विक्रांत पर कुछ शक लगने लगा था, लेकिन वो इस तरह से विक्रांत पर कोई उंगली नहीं उठा सकती थी। लेकिन करिश्मा जी अच्छी तरह से जानती थीं कि जो लोग उनकी पहचान है उसके चलते न जाने कौन कब दोस्त या दुश्मन के वेश में उनके सामने आ जाए और उसका सामना करना फिर कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं तारा के मन में काफी सारे अजीबोगरीब सवाल घूम रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो उसे करिश्मा जी के पति यानी अमन के पिताजी को भी ढूंढना था, ऊपर से उस राक्षस के अंश का पता लगाना था। उसे ये पता लगाना था कि आखिरकार वो राक्षस का अंश किसके अंदर मौजूद है, क्योंकि जब तक तारा ये पता नहीं लगाएगी कि वो अंश किसके अंदर है तब तक वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब तक उसे साफ पता ही नहीं होगा कि उसका दुश्मन कौन है कौन नहीं, वो कैसे उससे मुकाबला कर सकती है, क्योंकि उसका दुश्मन एकदम से छुपा हुआ था, एक छुपा हुआ दुश्मन। और सामने रहने वाला दोस्त अगर दुश्मन का ही एक रूप हो तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है।
तारा परी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि जिसे वो दुनिया भर में ढूंढना चाहती थी वो उसके घर में मौजूद है, उसकी आंखों के सामने। तारा ने सोचा कि उसे राक्षस के अंश का पता लगाने के लिए उसे एक बार बगीचे में जाकर जिन महाराज से मिलना होगा, क्योंकि एक जिन महाराज ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं और जो उसका पूरा सच जानते हैं। और साथ ही साथ तारा ने सोचा कि हो सकता है अमन के पिताजी का कोई सुराग उसे जिन महाराज दे दें, क्योंकि उन्हीं के सामने अमन के पिताजी अगवा हुए थे। तारा अपनी सोच में गुम अपने कमरे में आ गई थी और अपने कपड़े अलमारी में से निकालकर बाथरूम जाने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाथरूम के अंदर जाती अमन भी वहां आ गया था। अमन ने तारा का हाथ पकड़ लिया था। अमन को इस तरह से देखकर तारा हैरान हो गई थी। तब अमन ने तारा से कहा, आप अकेली बाथरूम में नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अमन की बात सुनकर तारा हैरान हो गई थी और बोली थी, इस टाइम आपको रोमांस सूझ रहा है? तब अमन ने कहा, नहीं, मैं आपको बाथरूम में भी अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई रोमांस नहीं सूझ रहा है, बस मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अब आप 24 घंटे मेरे साथ रहेंगी, मेरी आंखों के सामने। अगर आपको बाथरूम भी जाना होगा तो आप मेरे साथ जाएंगी। तारा अमन की बात बड़ी ही हैरानी से सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अमन को वो कैसे समझाए कि ये लड़ाई अमन की काली शक्तियों के साथ नहीं थी, बल्कि तारा की लड़ाई थी, जो उसके पिछले जन्म के दुश्मन यानी राजा विक्रम सिंह के साथ थी, जो अब एक खतरनाक राक्षस का रूप ले चुका था। तारा ने अमन को रोका, मैं खुद बाथरूम में जा सकती हूँ, आप चाहें तो तब तक मेरा बाहर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अमन उसे मना कर देता है और उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है।